गेंद कर कर वो वापस ले ले। वो हमारे मुकुंद प्रभु वो गाना चाहते हैं भजन कल, तो आप उनसे सुनिएगा। हम दूसरा छोटा सा भजन गाते हैं क्योंकि आज कार्यक्रम भी लेट शुरू हुआ है। हरे कृष्णा। सो हम सभी उपस्थित भक्तजनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल नित्यानंद त्रयोदशी और वराह द्वादशी है। सो भगवान वराह देव पे इस ग्रेस स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु कल क्लास देंगे योगेश्वर कृष्ण प्रभु के घर में। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप ये प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा। और आज हमने सोचा कि थोड़ा सा हम नित्यानंद प्रभु के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। सो पहले हम एक भजन गाएंगे छोटा सा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कृपया बीच में वार्तालाप ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रभु जी आगे आ सकते हैं, आगे बहुत जगह है, पीछे कोई भक्त आएंगे तो वो बैठ सकते हैं। आप आगे आ जाइए प्रभु। आज हमारा कार्यक्रम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है, कोशिश करेंगे। ये प्रभु उधर रखो, अगर किसी और को चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। धन मोरा नित्यानंदा, पति मोरा गौर चंद्रा। Thank you. विचार करिया माने भक्ति रस स्वादाने
विचार करिया माने भक्ति रस स्वादाने
मध्यस्थ श्री भागवत पुरा Vishnavare Namete Ullasa नित्यानंद प्रभु की श्री गौरांग महाप्रभु की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय
तारिणे
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा
सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णम्
भक्तरूपस्वरूपकम्
भक्तावतारं भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्
हे कृष्णा करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
विश्वभानु
सुते देवी
Bye.
स्वागत करते हैं कि आपने अपना कमती समय देकर इस शुक्रवार के सत्संग कार्यक्रम में आने की आप आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान श्री श्री गौर निताई गुरु परंपरा श्रील प्रभुपाद गुरुदेव और आप सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। और मैं हिज ग्रेस स्वयं स्फूर्ति कृष्ण प्रभु और हिज ग्रेस गिरिवरधारी प्रभु का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आपके सामने बैठकर कुछ दो शब्द कहने का प्रयास करूं। हम आज थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू किए हैं और मैंने प्रभु जी से भी बात की थी कि हमारी इच्छा है कि कल नित्यानंद त्रयोदशी है तो भगवान नित्यानंद के बारे में कुछ दो शब्द कहने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम भगवद्गीता का एक श्लोक पढ़ें और फिर नित्यानंद प्रभु के बारे में कहें या फिर सीधे नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के बारे में कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया तो मैं और बहुत डिले नहीं करना चाहता। एक बार हमारे मंदिर में एक भक्त है हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु, वो एक बार एक अपने क्लास में कह रहे थे, वो सभी को हिंदी आती है, एनीवन हु डज नॉट नो एट ऑल हिंदी, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, हु डज नॉट नो हिंदी, ऐसे कोई व्यक्ति है अगर इंग्लिश चाहिए तो आई थिंक सभी को आती है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु एक बार कह रहे थे जब वो अपनी क्लास प्रिपेयर कर रहे थे नित्यानंद त्रयोदशी के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, तो वो श्री चैतन्य चरितामृत ये जो शास्त्र है जो श्री गौरांग महाप्रभु की पूरी लीला का वर्णन करता है वो रिफर करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक चींटी जो है एन एंट वो उस किताब पर चल रही थी। तो प्रभु जी बैठ कर सोचने लगे और उन्होंने कहा कि डज दिस एंट रियलाइज द कंटेंट ऑफ दिस बुक, कि क्या इस चींटी को साक्षात्कार है या वो जान सकते हैं कि ये किस पुस्तक पे चल रही है। वो चींटी जो है वो एक ट्रांसेंडेंटल पुस्तक पे चल रही है। और फिर उन्होंने सोचा फॉरगेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, कि उस कंटेंट को तो क्या समझेगी वो, क्या उसको कम से कम ये चीज का ज्ञान है कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पे चल रही है। जैसे हम कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है उसको हम सिर पे लगाते हैं, उसको इधर उधर ऐसे उठा के फेंकते नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का साहित्यिक अवतार है। भगवान जब मत्स्य के रूप में आते हैं तो उन्हें मत्स्य अवतार कहते हैं, जब वो कछुए के रूप में आते हैं तो उन्हें कुर्म अवतार कहते हैं, उसी तरह जब वो शेर और मानव के रूप में आते हैं तो उन्हें नरसिंह कहा जाता है। तो उसी प्रकार भगवान जब साहित्य के रूप में आते हैं, पुस्तक के रूप में आते हैं, तो उसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं। और यही श्रीमद् भागवतम में लिखा है इदम भागवतम नामम पुराण ब्रह्म संहितम, ये श्रीमद् भागवतम जो है दिस इज लिटररी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण, ये भगवान का साहित्यिक अवतार है। उसने कहा कि उसको ये समझ है क्या, फिर वो सोचने लगे और खुद ही कहने लगे कि श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में या श्री चैतन्य चरितामृत या श्रीमद् भागवतम के ऊपर क्लास देने का उसी तरह है कि जिस तरह ये जो एक चींटी है ये उस पुस्तक पे चल रही है, मतलब हमारी इतनी योग्यता नहीं है और ना ही हमें इतना ज्ञान है, और योग्यता और ज्ञान दोनों के अभाव में अगर कोई व्यक्ति व्यासासन पर बैठ कर ये प्रयास करे कि मैं श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बता सकता हूँ या श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता सकता हूँ, तो वह भ्रम है, ये हम नहीं कह सकते। हमको तो ये ज्ञान भी नहीं है कि भगवान की जो शक्ति है वो कितनी है, भगवान कौन है, किस प्रकार भगवान लीला करते हैं, किसी चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है। पर वो फिर कहने लगे कि एक साधक जो है वो अपनी साधना में हमें बताया जाता है कि ये जो इस तरह के जो जैसे कल वराह द्वादशी और नित्यानंद त्रयोदशी है, इस तरह के जो त्यौहार है इसे बहुत ही उत्साह के रूप में मनाए, बड़ी उत्साह से सेवा करे और तैयारी करे इस त्यौहार के बारे में, और बड़े ही उत्साह के साथ भगवान के बारे में उसका कीर्तन करे और उसका ग्लोरिफिकेशन करे, उसके बारे में बताए। तो होपफुली मे बी समडे, हो सकता है शायद कभी हमको ये समझ आ जावे भगवान की कृपा से और दया से कि भगवान जो है उनकी ऊर्जा क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है और वो कौन है। कहते हैं कि हमारा जो जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वह है कि भगवान की प्रेम में ही सेवा करना और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम में सेवा करके उनको अचीव करना। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जैसे प्रभु जी ने भी भजन गाया, हेनो पदे निताई भाई राधा कृष्ण पाते नाई, कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के राधा और कृष्ण नहीं मिल सकते हैं। सो नित्यानंद प्रभु जो है वो गुरु तत्व है, ही सम टोटल ऑफ ऑल गुरुज, के वो जो है वो आदि गुरु है। सो हम जो होते हैं कि भगवान को केवल गुरु के माध्यम से ही समझा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं सीधे जाके भगवान के पास पहुंच जाऊंगा, तो वो मूर्ख है, क्योंकि भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं और भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये सीधा सीधा गणित है। इसमें कोई बहुत ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है वो एक मैगजीन लिखा करते थे, हारमोनिस्ट, उस मैगजीन के अंदर उन्होंने लिखा श्री नित्यानंद प्रभु के बारे में कि नित्यानंद प्रभु जो है वही जो गुरु का एक अस्तित्व रखते हैं। इन नित्यानंद द फंक्शन ऑफ गुरु इज एम्बॉडीड, नित्यानंद इज सर्वेंट गॉड। वो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है वो सर्वेटर गॉड है। जैसे कृष्णा को हम बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो इनको बोलते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इन सर्वेटरशिप, इस सेवा में भगवान की इतनी सेवा करते हैं। और श्री गौरांग सुंदर जो है वह श्री कृष्ण है और श्री नित्यानंद प्रभु जो है वह बलराम है। तो बताते हैं कि नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, जैसे कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। जैसे कृष्ण और बलराम में क्या फर्क है, केवल एक चीज का फर्क है। कोई बता सकता है क्या फर्क है? भगवान कृष्ण और भगवान बलराम में कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, चेहरा नहीं, पूरे शरीर का, उनके शरीर का जो है सिर्फ एक कलर का डिफरेंस है। कृष्णा इज ब्लैक एंड बलराम जी इज व्हाइट, तो बस केवल इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि दोनों सेम है। और एक बार प्रभुपाद ने ऐसे अपने शिष्य से मजाक में पूछा कि बताओ कृष्णा ज्यादा ताकतवर है, शिष्य राधा श्याम सुंदर भगवान की शिष्य गौर निताई की, उन्होंने पूछा कि बताओ कि भगवान बलराम ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पावरफुल है या भगवान कृष्ण? आप लोग क्या सोचते हो कौन ज्यादा पावरफुल है, कृष्णा या बलराम? कितने लोग बोलते हैं कृष्णा, हाथ उठाइए, ठीक है। कितने लोग बोलते हैं बलराम? वेरी गुड, 1 2 3 4 बहुत लोग। प्रभुपाद जी ने कहा निश्चित ही कृष्ण ताकतवर है। और कैसे? उन्होंने कहा क्योंकि हमारा जो वृंदावन का मंदिर है राधा श्याम सुंदर का, उसमें कृष्ण के कंधे पर बलराम हाथ रख के खड़े होते हैं और वो उनको सहारा देते हैं कृष्णा, इसलिए कृष्ण ज्यादा ताकतवर है, ये प्रभुपाद जी ने कहा था। एक बार और ऐसा किस्सा हुआ कि प्रभुपाद जी के पास हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये जो जमुना माता जी है और भवानंद प्रभु है इनके बीच में कुछ यू नो भेदभाव हो रहा है कृष्ण और बलराम को लेके। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि भवानंद प्रभु कह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम, ओनली डिफरेंस इज कलर, कृष्णा इज ब्लैक बलराम इज व्हाइट। यू नो उन्होंने कहा कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है, केवल एक कलर का भेद है। ये भवानंद प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो श्याम सुंदर रूप में है और बलराम जी है वो श्वेत रूप में कलर में है। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस ही इज राइट, वो सत्य कह रहे बरोबर है। तो उन्होंने कहा लेकिन यमुना माता जी भी कुछ कह रही है। तो बोले क्या, तो वो कहती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम, द ओनली डिफरेंस इज दैट ओनली कृष्णा एंजॉयस विद राधारानी नॉट बलराम। वो कहती है कि बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, केवल कृष्णा जो है वो राधा रानी के साथ लीला करते हैं और बलराम जी नहीं करते हैं। प्रभुपाद ने कहा यस शी इज राइट। तो तमाल कृष्ण महाराज थोड़े कंफ्यूज हो गए, बोले अरे प्रभुपाद हाउ कैन बोथ बी राइट, मतलब दोनों राइट कैसे हो सकते हैं। एंड प्रभुपाद बोले यू आर ऑल्सो राइट। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, तो एक चीज हम लेके नहीं चल सकते है ना, बहुत सारी चीज होती है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि वही कृष्ण और वही बलराम फिर आते हैं नवद्वीप में, अवतरित होते हैं श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में है। और कहते हैं कि बलराम जी जब आए थे तो वे बड़े फेमस थे, किस चीज के लिए, वो दुष्टों को दंड देने के लिए बहुत फेमस थे, कि वो कभी भी कुछ हुआ तो तुरंत दुष्टों को दंड दे देते। जैसे उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया, एक बार जब उनको गुस्सा आया तो हस्तिनापुर के अंदर हल लगाकर उस हस्तिनापुर को यमुना में फेंकने के लिए चल गए, और एक बार जब उनको गुस्सा आया तो यमुना जी से यू नो गुस्सा हो गए और बोले कि यमुना के मैं लाखों टुकड़े कर दूंगा, और उन्होंने स्ट्रीम करना शुरू कर दिया इस तरह से। और एक बार जब वो तीर्थ यात्रा पे गए थे तो उन्होंने रोमहर्षण सूत का वध कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये बलराम जी का मूड है, लेकिन वही बलराम जी जब नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं तो वो कैसे होते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, वे कभी क्रोधित नहीं होते हैं। तो ये बलराम जी कौन है ये समझना बड़ा आवश्यक है। तो इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम में से एक चर्चा करेंगे कि जब बलराम जी को ये पता चला कि कुरु और पांडवों में युद्ध हो रहा है, तो क्योंकि वो दोनों पार्टी से प्यार करते थे, दोनों को चाहते थे, दुर्योधन के प्रति भी उनका बड़ा प्रेम था और अर्जुन के प्रति भी, तो उन्होंने कहा कि मैं दोनों की तरफ से लड़ना नहीं चाहता, और क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो ये व्रत लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बलराम जी जिसी के भी पार्टी में चले गए वो पार्टी युद्ध जीत जाएगी। तो बलराम जी नहीं चाहते थे कि मैं कहीं जाऊं, तो वे तीर्थ यात्रा पे निकल गए। तो काफी अच्छा वर्णन आता है कि बलराम जी प्रभास क्षेत्र से लेके वहां पर स्नान करके वो अपने तीर्थ यात्रा पे निकले और बहुत ही अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा पे गए, और अल्टीमेटली लास्ट में नैमिषारण्य में आए, उस जंगल में जहां पर कई ऋषिगणी लोग यज्ञ कर रहे थे, कई वर्षों से यज्ञ कर रहे थे। तो वहां पर जब भगवान बलराम पहुंचे तो सभी ऋषिगण ने आदर देते हुए वो अपनी जगह से खड़े हो गए, बलराम जी को प्रणाम किया और उनके सामने झुके, और फिर बलराम जी ने अपना आसन ग्रहण किया। लेकिन उन्होंने एक चीज देखी कि रोमहर्षण सूत जो था, जो थे वो भागवत का क्लास दे रहे थे वहां पर, श्रीमद् भागवतम पर बोल रहे थे, और वो उठे नहीं और वो बैठे रहे। तो इस पर बलराम जी को बड़ा ही क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा अपने मन में कि ये सूत परिवार का व्यक्ति किस तरह से गिर गया है कि मेरे आने के बाद भी ना तो वो खड़ा हुआ और ना ही कम से कम वो हाथ जोड़कर उसने मुझे प्रणाम किया, और ये बड़ी ही उद्दंडता है, ये ना बड़ा उद्दंड हो गया है, और ये जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा भागवतकार समझ रहा है, भागवत प्रवक्ता समझ रहा है, और व्यासासन पर बैठ के बड़ा बड़ा लेक्चर दे रहा है। तो बलराम जी ने कहा कि ये जो मूर्ख व्यक्ति है ये अंतर जातीय विवाह से पैदा हुआ, ये ब्राह्मणों के और मेरे भी ऊपर व्यासासन पर बैठा हुआ भागवत प्रवचन कर रहा है, और इसको पता नहीं है कि सदाचार क्या होता है, टिकट क्या होता है, इसके लिए उसे मरना होगा। और फिर वह एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ऑल्दो ही इज अ डिसाइपल ऑफ व्यासदेव, हालांकि वो श्रील व्यासदेव का शिष्य है और बहुत ही अच्छी तरह से सारे शास्त्र पुराण और स्क्रिप्चर्स आदि को पढ़ा है उसने, फिर भी ही हैज नॉट सफिशियंटली डेवलप्ड ह्यूमिलिटी, जो नम्रता है वह उसमें अभी तक नहीं आई है। तो बोले इतना सब कुछ पढ़ लिया है और व्यासदेव जी का शिष्य भी है लेकिन उसमें नम्रता नहीं आई है, और इसके लिए मैं इसे मारूंगा। तो बलराम जी ने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि मेरा जो अवतार हुआ है वो दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य शुक्लानि भवति परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। तो उन्होंने क्या किया, एक कुशा ग्रास उठाया, एक घास का तिनका, कुश ग्रास जो होता है, और वह घास लेके वो रोमहर्षण सूत के पास जाके केवल उनको टच किया, रोमहर्षण सूत वहीं मर गए। तो सिर्फ और उन्होंने कुछ नहीं किया था, उन्होंने ब्रह्मास्त्र नहीं लिया था, केवल कुशाग्रास लेके मार दिया। अभी कुछ लोग सोच सकते हैं कि केवल कुशाग्रास से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है, तो ये भगवान है और ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि भगवान में जो है वो काफी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर जो ऋषि मुनि थे वह सब चिल्लाने लगे, हाय हाय बलराम जी आपने ये क्या कर दिया, आपने अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी और उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसको हमने अभी आशीर्वाद दिया था और ये कहा था कि आप हजारों वर्ष तक जिएंगे और आपने ये क्या कर दिया। तो बलराम जी जो थे वह खुद काफी नम्र थे, उन्होंने ये नहीं सोचा लाइक ना हम लोग देखते हैं कभी कभी पिक्चर के अंदर कि कोई पिक्चर का हीरो होता है, तलवार लेके आता है फाइट करने के लिए, किसी को मार देता है और फिर दूसरों को तलवार दिखाता है, कोई है कोई आना चाहता है मेरे सामने आ जाओ। तो बलराम जी वैसे ग्रास नहीं दिखा रहे थे, कोई ऋषिगण आते हैं मेरे सामने आओ बताओ मैं तुमको भी उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने तुरंत कहा कि हे ऋषिगण मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या प्रायश्चित है। तुरंत उन्होंने तो फिर ऋषिगण उनको बोले कि नहीं आप तो भगवान है। एक्चुअली बलराम जी उनको बोलते हैं कि आप कहो तो इसको वापस से मैं जीवित कर दूं, ना मेरे में इतनी ताकत है मैं इसको वापस से जीवित कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे पर्पस होता है, तो आपने अगर इसको मारा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहेगा। अभी आप ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे सारे के सारे चीज जो है वो बरोबर हो जाए। तो बलराम जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है वो अपने पुत्र के रूप में भी जाना जाता है, तो अगर उसके पुत्र को व्यासासन पर हम बिठा देंगे तो ऐसा होगा कि वो खुद ही व्यासासन पर बैठे हुए हैं। तो वो उनको व्यासासन पर बिठा के, तभी जो सूत गोस्वामी है हमारे वो भागवतम का क्लास करते हैं, और बलराम जी फिर पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए फिर तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं। तो अभी ये लीला जिसमें बलराम जी बहुत ही क्रोधित रूप में रोमहर्षण सूत को मार दिया, तो हम अगर इसके बारे में ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि जो रोमहर्षण सूत है टेक्निकली ही डिड नॉट ब्रेक एनी एटिकेट, जैसे उन्होंने कोई भी सदाचार का उल्लंघन नहीं किया था। कैसे, कि जब कोई भी व्यक्ति हालांकि वो कितना भी छोटा हो जब व्यासासन ग्रहण करता है या व्यासासन पर बैठता है तो टेक्निकली ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू गेट अप व्हेन समबडी कम्स टू ग्रीट हिम। तो अगर कोई व्यक्ति आता है या कोई आता है तो खड़ा होना जरूरी नहीं है, ये सदाचार में नहीं आता है। सो टेक्निकली ही वॉज राइट बट डिवोशनली ही वॉज रॉन्ग, कि टेक्निकली वो सही थे लेकिन आध्यात्मिक रूप से और भक्ति के रूप से देखा जाए तो वो गलत थे। कई क्यों, क्योंकि बलराम जी जो है ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो कोई भी व्यक्ति नहीं है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान श्री कृष्ण खुद है बलराम जी। सो हमारे जो शास्त्र थे वे हमको बताते थे कि अगर छोटा सा भी बिहेवियर के अंदर अगर कुछ फ्लॉ होगा तो उसकी सजा ये होगी, और बलराम जी जो है उनको क्षमा, उनकी जो क्षमा है वो सिर्फ दो तीन चीजों से होती थी, गदा से या मुक्के से या फिर उनके हल से, वो और किसी चीज से क्षमा नहीं करते थे। तो बताते हैं कि भगवान का अगर ये रुख है, ये उनका अगर मूड है, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि हम, कि जो मेरे पास जिस तरह आता है मैं उसी तरह उसको रिवॉर्ड करता हूँ। तो बताते हैं कि अगर यही भगवान का डिस्पोजिशन है, यही भगवान का मूड है, तो हमारे लिए भक्ति बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हमारे में वो गुण नहीं है नम्रता का, हमारे में कोई भी गुण नहीं है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो बताते हैं कि हम क्या कर पाएंगे, और इस कलयुग के अंदर तो आसान नहीं है। तो वही भगवान बलराम जब भगवान नित्यानंद के रूप में आते हैं, सो ही टेक्स अनदर मूड, ही टेक्स अनदर डिस्पोजिशन, उनका जो मूड होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे जगाई और मधाई का उद्धार की जो लीला है उसमें जब नित्यानंद प्रभु जगाई और मधाई को देखते हैं तो तुरंत भागते हैं उनके पास उनको बचाने के लिए, हालांकि जगाई और मधाई बहुत बड़े रास्कल टाइप के लोग थे लेकिन वे उनके पास जाते हैं। सो एक बार मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं दैट व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु का जो मूड है वो कैसा है, एंड ही सेज दैट नित्यानंद प्रभुज मूड एंड साइकोलॉजी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द साइकोलॉजी ऑफ कंडीशन सोल, मतलब कि जो बद्ध जीव है वह हमेशा क्या फिराक में रहता है, वो क्या सोचता है कि हम कुछ भी सबसे अच्छी से अच्छी चीज ग्रहण करना चाहते हैं, हमारी आदत है कि कोई भी अच्छी चीज अगर रहेगी तो उसमें हम लेना चाहेंगे, हर अच्छी चीज में हमारा रहता है, तो हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कुछ कर रहा है या कोई यू नो किसी में कुछ महानता या किसी में कोई ऊर्जा है तो हम तुरंत उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक शिक्षक जो होता है वो देखता है कि कोई विद्यार्थी जो कक्षा में सबसे अच्छा है यू नो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, उस पर ध्यान देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये व्यक्ति और आगे जाकर मेरा नाम रोशन करेगा ना, तो उसे वो चीज रहती है। जैसे आईआईटी के अंदर हर कोई नहीं जा सकता, यू नो जो अच्छे चोजन व्यक्ति होते हैं वही जा सकते हैं ताकि उनके पीछे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मगर नित्यानंद प्रभु ऐसा नहीं, नित्यानंद प्रभु क्या देखते हैं कि दोज हु आर मोस्ट अनक्वालिफाइड ही अप्रोचेस देम, वो उनके पास जाते हैं, और इसीलिए भक्ति करना सुलभ है। अगर ये नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती तो हम शायद ना भक्ति नहीं कर पाते। सो चैतन्य महाप्रभु, जैसे एक बार ये नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई को देखा नहीं था, उन्होंने भी जगाई और मधाई को देखा था। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु और जगाई मधाई का सामना हुआ तो जगाई और मधाई उनको कहने लगे कि हे गौरांगा प्लीज यू नो यू सिंग एक चंडी का काली का एक भजन गाओ और हम नृत्य करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बिकम डिसगस्टेड, वो वहां से चले गए, ही वॉक्ड अवे। पर कॉन्ट्ररी टू द नेचर ऑफ हिज मास्टर चैतन्य महाप्रभु, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु ने जाके उन्हें अपनी कृपा दी। और इसीलिए वे देखते थे कि जब कोई भी एकदम अधम व्यक्ति है उसके पास जाकर उन्हें बहुत ही उत्कृष्ट भक्ति जो है वह उनको देते थे। और नित्यानंद प्रभु का जो ये लीला है जगाई और मधाई के उद्धार का, उसको देख के कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकता। और कोई जैसे हम प्रचार करने के लिए जाते हैं कभी या किसी को कहते हैं कि भक्ति कीजिए माला कीजिए, तो लोग बोलते नहीं मैं तो बहुत फॉलन हूँ मेरे से नहीं होता ये, नहीं कर सकता है। अरे जगाई और मधाई से क्या फॉलन है ना, अगर हम उनकी चर्चा भी करेंगे आगे जाके तो बताते कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता भक्ति करने के लिए। भक्ति करना आसान है ना, क्यों? क्योंकि बलराम जी की श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो हमें जानना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो कौन है, उनकी पोजीशन क्या है। सो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, सर्व अवतारी कृष्णा स्वयं भगवान ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है वह सभी अवतारों के अवतारों में के फाउंटेन हेड है, मतलब शीर्ष है वो, और जो बलराम है वो उनका द्वितीय शरीर है। और वे आगे कहते हैं कि सेई कृष्ण नवध पे श्री चैतन्य चंद्र सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद। कहते हैं कि जो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम, वह फिर से नवद्वीप के अंदर गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और बलराम जी जो है वो श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। सर्व रूपे अस्वादाय कृष्ण सेवानंदा से ही बलराम गौर संगे नित्यानंदा। बताते हैं कि बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत सेवाएं करते हैं, कि जो भी भगवान कृष्ण का जो पैराफर्नेलिया है वो सब बलराम जी है। तो एक बलराम जी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो भगवान श्री कृष्ण को हर तरह के रस में सहायता करते हैं, हर तरह का कोई भी जो रस है उसके अंदर बलराम जी। तो बताते हैं कि सेम उसी रूप में नित्यानंद प्रभु भी श्री गौरांग महाप्रभु की सहायता करते हैं। जब गौरांग महाप्रभु आते हैं गौर सुंदर, तो नित्यानंद प्रभु उनकी सहायता करते हैं। सो बताते हैं कि कल जो दिन है त्रयोदशी वैक्सिंग मून, उस त्रयोदशी के दिन वेस्ट बंगाल में राधा देश में एक गांव है जिसका नाम है एक चक्र। एक चक्र गांव में श्री नित्यानंद प्रभु ने अवतरित हुए थे, और एक बहुत ही अच्छे पंडित थे, वेरी वेरी क्वालिफाइड ब्राह्मणा जो बहुत ही कृपालु थे, उनका नाम था हड़ाई पंडित, और उनकी पत्नी थी उनका नाम था पद्मावती। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती ये रहते थे वहां पर, और बहुत ही मैग्नानिमस बहुत ही उदार ब्राह्मण थे। सो श्री नित्यानंद प्रभु ने अपनी मर्जी से उनके घर प्रकट होना स्वीकार किया, और जब नित्यानंद प्रभु आए तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कंसील करके रखा, उन्होंने बताया नहीं किसी को, और वो अपने जो मित्र थे उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से लीला करते थे। और उनका फेवरेट काम क्या था, जैसे हमने देखा है कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो कई खेल खेलते हैं, पर बलराम जी नित्यानंद प्रभु निताई केवल एक ही खेल खेलते थे। क्या करते थे वो, किसी को याद है? वो सिर्फ ड्रामा करते थे वो सिर्फ ड्रामा करते थे, और बहुत ही पास टाइम ड्रामा में करते थे। जैसे एक बार उन्होंने मैरिज ऑफ वसुदेव एंड देवकी किया, कई राक्षसों का वध और ऐसा सब करते थे, लेकिन उनका मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रामा जो होता था वो श्री रामचंद्र जी के बारे में होता था, जिसमें वो लक्ष्मण का रोल करते थे, भगवान स्वयं वो लक्ष्मण है। तो एक बार ये हुआ कि उन्होंने सब बच्चों को बताया, उन्होंने ड्रामा डायरेक्ट किया और कहा कि हम ये लक्ष्मण का ड्रामा करेंगे। तो एक व्यक्ति, एक लड़का, उसने कहा कि मैं इंद्रजीत हूँ और आज लक्ष्मण मैं तुम पर ये बाण छोड़ूंगा, शक्ति बाण छोड़ूंगा। और ऐसा करके उसने कमल का फूल लिया और निताई के ऊपर फेंका, और जैसे ही वो फूल निताई को लगा, निताई नीचे गिर गए और अनकॉन्शियस हो गए, मूर्छित हो गए। तो उसके पास लोग गए, बच्चे लोग, और उसको उठाने का प्रयास करने लगे, पर देखा कि वो मूर्छित ऐसे हुए हैं कि उठ ही नहीं रहे, टोटल अनकॉन्शियसनेस। सो वो सब जोर जोर से विलाप करने लगे, रोने लगे बच्चे लोग, कि अरे नित्यानंद प्रभु उठ नहीं रहे, क्या बात है। तो इतना जोर से विलाप करने लगे कि सारे गांव के लोग वहां पे आ गए, उनके माता पिता भी आ गए, और उनमें जीवन का कोई भी अंश नहीं दिख रहा था, बस केवल मूर्छित पड़े हुए हैं। तो इतना जोर जोर से रो रहे थे वो कि वो लोग सब भूल गए कि एक्चुअली ड्रामा क्या करना था। तो हालांकि नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा था कि जब मैं मूर्छित हो जाऊं तो एक लड़का हनुमान बन के गंधमाधव पर्वत पर जाना और वहां से जाके वो संजीवनी जड़ी बूटी ला देना, लेकिन वो सब भूल गए, वो मूर्छित पड़ गए तो सब भूल गए, क्या करें। फिर इतना रोने के बाद किसी को याद आया, अरे उनको हनुमान बनने के लिए बोला था। तो फिर वो हनुमान बना और जंप मार के वो गंधमाधव पर्वत पे गया। तो बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है कि किस तरह से उसने डीमंस जो है उन लोगों को मार के, और फिर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि संजीवनी क्या, तो पूरा पर्वत ही उठा के लेके आ गए। तो जब वो पर्वत लेके आए तो एक जो लड़का था वो वैद्य के रूप में, उसने वो संजीवनी लाई और जैसे ही निताई को, नित्यानंद प्रभु को सुंघाया, नित्यानंद प्रभु उठ गए। तो सब बहुत खुश हो गए और जोर से चिल्लाने लगे हरी हरी। तो सब लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए और सब गांव वालों ने नित्यानंद प्रभु से पूछा कि अरे आप तो केवल 5 वर्ष के हो, आपने तो कोई पुस्तक भी अभी तक नहीं पढ़ी है, आपको इतना इंटीग्रेसी ड्रामा के बारे में कैसे पता, इतना अच्छा ड्रामा आप कैसे कर रहे हो, और ये सब चीज किसी ने बताई नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये सब मेरी लीलाएं हैं, हंसकर उन्होंने कहा कि दीज आर ऑल माई पास्ट टाइम्स। तो उन्होंने हालांकि सच कहा, लेकिन लोग उनकी योग माया के वजह से समझ नहीं पाए कि बलराम जी, नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह दिन बीतते गए। तो एक बार श्री हदाई पंडित के घर पे एक ब्राह्मण आए, एक सन्यासी आए, और जैसा कि ट्रेडिशन है कि कोई भी ना बड़ा व्यक्ति सन्यासी हमारे घर आता है तो हम उसकी सेवा करते हैं अच्छे मन लगाकर। तो सेवा करने के बाद जब वो जा रहे थे तो हड़ाई पंडित हाथ जोड़ कर उनसे कहने लगे कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सन्यासी कहने लगा, हालांकि ये सब भगवान का अरेंजमेंट था, उस सन्यासी ने कहा कि मैं अकेला ना मेंडिकेंट हूँ, मैं बस भ्रमण करता रहता हूँ, मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, आप मुझे एक असिस्टेंट दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका जो पुत्र है निताई, इसको मैं साथ में लेके जाऊं। तो तुरंत हड़ाई पंडित को बड़ा एकदम झटका लगा, शॉक लगा कि अरे मेरा निताई, क्योंकि ऐसा बताता है कि अगर निताई एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए निमेश मात्र, पलक झपकने तक भी अगर वो पद्मावती और हड़ाई पंडित को नहीं दिखाई देते थे तो वे व्याकुल हो जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे। अभी हमारे को ये बात समझ में नहीं आएगा कि कैसे भाग रहे हैं, पर ऐसा होता है। तो वो जब जा रहे थे तो बड़ा उनको झटका लगा, वो पद्मावती के पास गए और बोले कि ये तो व्यक्ति मेरे प्राण लेना चाहता है, मैं कैसे अपने प्राण दूँ। तो पद्मावती ने कहा कि आपकी जो इच्छा है स्वामी, वो मेरी भी इच्छा है, अगर वो लेना लेके जाना चाहते हैं और आपने अगर प्रॉमिस किया है तो हमें निताई देना पड़ेगा। तो हड़ाई पंडित को तुरंत दशरथ महाराज की याद आ गई और उन्होंने देखा कि किस तरह विश्वामित्र मुनि आए थे दशरथ के पास श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए, और कितनी मुश्किल के साथ दशरथ महाराज को ये डिसीजन लेना पड़ा था कि श्री रामचंद्र जी को उनके साथ भेजे। तो वही अवस्था उनकी हो गई। तो बताते हैं कि कई बार हम इस तरह के लीला देखते हैं, पास्ट टाइम देखते हैं, कि जब भगवान अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को छोड़ के जब जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी जब प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे, तुरंत वो चले गए छोड़ के, उसी तरह गौरांग महाप्रभु भी चले गए। लेकिन गौरांग महाप्रभु की लीला जो संन्यास लीला है जहाँ पर वो जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु की लीला में थोड़ा फर्क है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कम से कम सची माता को और विष्णु प्रिया को प्रिपेयर कर रहे थे संन्यास के लिए, वो कुछ कुछ इंडिकेशन दे रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा। ऐसा जैसे हमने एक ड्रामा किया था गौरांगा टेक संन्यास, जो हमने 3 साल पहले निर्जल एकादशी के दिन देखा भी था, उस ड्रामा में हमने देखा कि किस तरह वो इंडिकेशन दे रहे थे। तो बता था कि एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पे वो दिन रात कीर्तन करते थे और बड़े ही अच्छी राग में श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तगण कीर्तन करते थे। जैसे स्वरूप दामोदर प्रभु एक ट्यून गाते हैं बहुत ही अच्छा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिवास आंगन में इस तरह से कीर्तन किया करते थे। और एक बार जब कीर्तन चल रहा था तो श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई अचानक, और उस घर में जो भी लेडीज थे वो जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी। तो इस आवाज को सुन के श्रीवास ठाकुर अंदर कमरे में आए और उन्होंने कहा क्या हो गया, तो किसी ने कहा कि आपका पुत्र मर गया है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने सब स्त्रियों को कहा, लेडीज को कहा कि मैं तुम्हें खबरदार ये वार्निंग देता हूँ कि कोई भी जोर से नहीं रोएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं वो कीर्तन से बाहर आए, यू नो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए। और मैं ये प्रण लेता हूँ कि यदि तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को डिस्टर्ब किया तो मैं अपने गले में पत्थर बांधकर गंगा में डूब जाऊंगा। और इस तरह बोल के वो चले गए, और चैतन्य महाप्रभु और सब भक्तगण इस तरह से कीर्तन कर रहे थे। और अचानक 7 घंटे के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु रुके और उन्होंने कहा कि आज कीर्तन में मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, रस नहीं मिल रहा है, यू नो शिवास के घर में क्या कोई दुख प्रकट हुआ है क्या। तो शिवास तुरंत आए और बोले दुख दुख कैसा महाप्रभु, जिस घर के अंदर स्वयं भगवान श्री गौरांग सुंदर कीर्तन कर रहे हो उस घर के अंदर तो दुख आ ही नहीं सकता। और फिर किसी ने कहा कि शिवास ठाकुर का जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। तो सबने कहा कि शिवास नहीं चाहते थे कि आपको पता चले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कब हुआ ये किस्सा, तो किसी ने बताया कि 7 घंटे हो गए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि 7 घंटे हो गए हैं और शिवास ठाकुर ने मुझे बताया नहीं और कीर्तन चल रहा है, और उन्होंने जब देखा कि शिवास ठाकुर का जो फेथ है जो श्रद्धा है वो कीर्तन में भगवान के प्रति इतनी दृढ़ है कि वो अपना जो नेचुरल अफेक्शन है अपने पुत्र के प्रति वो भी प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो वो बड़े ओवरवेलम्ड हो गए। और उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा कहा डिवोटी से दैट हाउ इन द वर्ल्ड आई कुड लिव विदाउट द एसोसिएशन ऑफ लविंग डिवोटीज, कि मैं किस तरह से इस संसार में इस तरह के जो यू नो प्रिय भक्त है उनका साथ छोड़कर रह सकूंगा। तो जब सारे डिवोटी लोगों ने सुना कि अरे महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं भक्तों के बिना कैसे रहूंगा, सबको शॉक लग गया। तो ये पहला इंडिकेशन था कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। और इसी तरह कई इंडिकेशन वो सची माता को और विष्णु प्रिया को देते रहे। तो और जब चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उसके पास संन्यास उनका दुखद था लेकिन बाद में वो बड़ा सुखद था। क्यों? क्योंकि वो वापस आके सची माता से मिलते हैं और सची माता उनको कहती है कि नहीं आप जगन्नाथपुरी में जाओ, और वहां से उनको न्यूज मिलती जाती है। लेकिन जब निताई ने घर छोड़ा तो हड़ाई पंडित और पद्मावती को बिल्कुल भनक नहीं थी कि नित्यानंद प्रभु इस तरह से मेरे पास से चले जाएंगे। तो हालांकि उनको ऐसा लगा कि मेरे प्राण जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने निताई को साथ में भेजा। और कुछ दिन और कुछ महीनों के बाद श्री हड़ाई पंडित की मृत्यु हो गई और पद्मावती माता जी भी चल बसी। और पूरा का पूरा एक चक्र गांव जो था वो निताई के न होने की वजह से वो ऐसा लगता था कि भूत भूत बंगला जैसा हो गया है, कि वहां खाली भूत रहते हैं, और पूरा इस तरह की चीज हो गई। फिर नित्यानंद प्रभु वहां से निकलकर ट्रैवल करने लगे, बताते कि बहुत संसार में जो भारत है पूरा भारत का वो भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते अंत में वो श्री वृंदावन धाम पहुंचे। तो एक और चीज आती है कि जब नित्यानंद प्रभु छोटे से थे तो करीबन 5 वर्ष के थे ऐसा कुछ या 13 वर्ष के, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त एक बार हुंकार लगाई, एक बार ही रोड लाइक ए लायन, एक शेर की तरह उन्होंने, तो किसी को समझ में नहीं आया कि वो ऐसा हुंकार क्यों लगा रहे हैं। क्यों उन्होंने हुंकार लगाई? क्योंकि उनको पता चला कि श्री गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया है। तो वो जब वृंदावन में थे उनको पता चला कि श्री गौरांग महाप्रभु ने अपनी लीला अभी शुरू कर दी है, संकीर्तन मूवमेंट शुरू कर दिया है। और यहाँ पर भी श्री गौरांग महाप्रभु को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा निताई किधर है, तो ये दोनों भगवान का हृदय एक दूसरे से बात कर रहा था। सो नित्यानंद प्रभु समझ गए और इमीजिएटली वृंदावन से श्रृंगार वट से निकलकर वो नवद्वीप में आ गए। तो जब नवद्वीप में आए तो गौरांग महाप्रभु बहुत ही खुश हो गए, और उन्होंने कई भक्तों से ये बात पहले कह चुकी थी कि कोई एक बहुत ही एग्जॉल्टेड पर्सनालिटी आने वाली है यहाँ पर, और बाय विल ऑफ द प्रोविडेंस उसी दिन निताई वहां पर आए और वो श्री नंदन आचार्य के घर में जाकर रुके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे दिन भक्तों से कहा सुबह कि कल रात को मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि एक बहुत ही अच्छा पर्सनालिटी का व्यक्ति आया रथ पे, जिसके रथ के ऊपर एक बहुत ही अच्छा झंडा था, और वो मेरे घर के सामने रुक गया। और उस रथ पे से एक व्यक्ति निकला जिसके कंधे पे एक बहुत बड़ा पिलर जैसा कुछ था, और वो ब्लू कपड़े में, मतलब ब्लू गारमेंट में थे वो। और उन्होंने आके मुझसे पूछा कि क्या यही निमाई पंडित का घर है? और मुझे ऐसा लग रहा था कि वह जो पर्सनालिटी है वह हलधर बलराम है। सो चैतन्य महाप्रभु आगे बोले कि मैंने कभी भी ऐसे एक पावरफुल पर्सनालिटी को नहीं देखा कि उनमें इतना तेज था कि बहुत सारे लाखों और लाखों जो सूर्य है वो भी उनके सामने फीके पड़ रहे थे। और वह एक अवधूत, एक मैंडिकेंट के रूप में थे, सन्यासी के रूप में थे। और मैं उसको देखकर एकदम चकित रह गया और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने हंसते हुए मुझे जवाब दिया और कहा, अरे मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और मैं कल आपसे मिलूंगा और हम एक दूसरे को जान पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले डिवोटी से कि अब मुझे लग रहा है कि वह व्यक्ति यहाँ पर आ चुके हैं और हम उनको जाकर उनसे मिलेंगे। तो वे कहने लगे, हरिदास, ओ शिवास, आप जाओ और इस ढूंढ निकालो इस पर्सनालिटी को जो यहाँ पर आए हैं। तो शिवास और हरिदास ठाकुर और दूसरे डिवोटीज जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, पर भगवान की लीला ऐसी है कि वो उनको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो वापस आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चलो मैं तुमको ले चलता हूँ और उस पर्सनालिटी से मिलाता हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सीधे नंदन आचार्य के घर में जाते हैं, जहाँ पर लोग देखते हैं कि एक हीरे के रूप में बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी आई हुई है नवद्वीप में, और बहुत ही दीप्तिमान, मतलब तेज है उनके चेहरे पे। और ऐसे व्यक्ति को देखकर सब लोगों ने अपना दंडवत लगाना शुरू कर दिया और किसी ने भी एक वर्ड नहीं कहा, बस एक दूसरे को सिर्फ ताकते रहे, देखते रहे। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति के पास गए और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो खुद भी काफी सुंदर लग रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु का ये जो सुंदर रूप था, जो कि कामदेव को भी पराजित करता है, इस रूप को जब नित्यानंद प्रभु ने देखा तो एकदम स्टंट रह गए और बहुत ही खुश हुए और वो विश्वंभर को बस देखते रह गए। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इशारों में शिवास ठाकुर को कहा भागवतम का एक श्लोक पढ़ने के लिए। तो शिवास ठाकुर ने भागवतम का एक श्लोक पढ़ा और वो श्लोक पढ़ के, जिसमें वर्णन आता है कि किस तरह से कृष्ण और बलराम मोरपंख लगाकर गाय को चराने के लिए वृंदावन में जा रहे हैं, जब उन्होंने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन सुना तो नित्यानंद प्रभु वहीं पर गिर गए और मूर्छित हो गए। और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठ खड़े हुए और जोर से चिल्लाने लगे और रोने लगे और वो एक शेर की तरफ हुंकार करने लगे और अपने कंधों को जोर जोर से हिलाने लगे। और फिर वो हवा में बड़ी ही तेजी से ऊपर उड़े और इतना जोर से ऊपर उड़े और नीचे गिरे कि लोगों को लग रहा था कि उनकी जो हड्डियां है वो चूर चूर हो जाएगी, सब टूट जाएगी। और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। तो बताते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु का जो शरीर था उसमें भक्ति के जो लक्षण है, परम भक्ति के, वो सब लक्षण दिखाई दे रहे थे। कि जैसे कंपन जो होता है, शिवरिंग, वो उनकी बॉडी में होने लगा, उनके जो रोम कूप थे वो हाथ के ऊपर खड़े हो गए और उनको पसीना निकलने लगा, वे लौटने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, और इस तरह की जो भक्ति के जो उच्च स्तर के लक्षण है वो सब दिखाई देने लगे। और ऐसा करते करते वो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के पैरों में गिर पड़े और उनके पैर पकड़ने लगे, और श्री गौरांग महाप्रभु भी उनके पैर पकड़ने लगे और एक दूसरे के वो पैर पकड़ने लगे दोनों जन। और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगे, फिर वो हंसने लगे और नाचने लगे। तो ये लीला बड़ी विचित्र लीला थी। और फिर नित्यानंद प्रभु ने विश्वंभर को देखा और कहा कि अरे आप कहाँ थे? मैंने पूरे संसार में भ्रमण किया और मैं ढूंढता रहा कि गौरांग महाप्रभु कहाँ है, पर मेरे को कहीं नहीं मिला। और फिर मुझे किसी ने कहा कि नंद बाबा का जो लाला है, जो लड़के हैं, वो नादिया के अंदर गौर सुंदर के रूप में है, तो आप वहां पे जाओ और आपको वहां पे कृष्ण मिलेंगे। तो कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और अब मैं देखता हूँ कि तुमको मुझसे कौन छुड़ा सकता है। और इस तरह से दोनों बात कर करके हंसने लगे। और श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उनका जो प्रेम था वो इतना उत्कृष्ट रूप का प्रेम था, इतना अच्छा प्रेम था कि उस प्रेम की जो अगर उपमा अगर हमको देनी है तो केवल राम और लक्ष्मण से दे सकते हैं, बस और कोई उपमा नहीं दे सकते। इतना अच्छा प्रेम था उनके बीच में। और वो दोनों नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते फिर नित्यानंद प्रभु ने जंप मारी और आके नीचे गिर गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपनी गोदी में लिया और उनको सुलाया। तो वहां पर गदाधार पंडित जो थे वो उन्होंने ये नजारा देखा और मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत शेष जो है, अनंत नाग जो है, वह भगवान विष्णु को अपने शरीर पे सुलाते हैं, पर यहाँ पर भगवान विष्णु के शरीर पे अनंत नाग सो रहा है। ये क्या बात है ना, ये किस तरह की लीला है? तो फिर नित्यानंद प्रभु को समझ में आ गया, क्योंकि वह गदाधर पंडित का हृदय जानते हैं और गदाधर पंडित नित्यानंद प्रभु का हृदय जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और विश्वंभर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, बहुत ही शुभ दिन है कि मुझे तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी का दर्शन हुआ और मैंने तुम्हारे शरीर में प्योर भक्ति, एक शुद्ध भक्ति के सारे वो लक्षण देखे हैं। और यदि भगवान कृष्ण की कृपा ना हो तो किसी व्यक्ति के अंदर इस तरह के ऐसे शुभ लक्षण दिखाई नहीं दे सकते हैं। तो वो कहने लगे कि आज तुम्हारी पूजा करके मैं धन्य हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं। तो एक दूसरे को वो इस तरह से ग्लोरीफाई करने लगे। और श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भी नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का ये जो मीटिंग है, ये जो मिलाप है, इसका जो भी वर्णन सुनेगा और कहेगा, उसे वो इस सारे संसार के भाव बंधन से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण की का प्रेम अचीव करेगा। श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्री नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की। सो नित्यानंद प्रभु जो थे वो बलराम जी की तरह श्री गौरांग महाप्रभु की नित्य सेवा करते थे। जैसे जो बलराम जी थे, ही इज द पैराफेरनलिया फॉर लॉर्ड कृष्णा, सिमिलरली भगवान गौरांग महाप्रभु को जो कुछ भी सेवा की जरूरत थी, नित्यानंद प्रभु उनके लिए सेवा करते थे। तो एक बार वे काफी उनके साथ में रहते थे, तो सची माता ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने एक स्वप्न क्या देखा कि सची माता के घर में निताई और निमाई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, दोनों 5 वर्ष के बालक है और घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। और फिर भागते भागते वो पूजा रूम में चले गए और वहां से जाकर कृष्ण बलराम की मूर्ति अपने हाथ में पकड़ के लेके आए। नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण को पकड़ के रखा था और निमाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने बलराम जी को पकड़ के रखा था। और वे चारों एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, एक्चुअली एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और क्या बोलने लगे, कृष्ण और बलराम ने कहा उनसे कि तुम दोनों धूर्त व्यक्ति कौन हो, भाग जाओ इस घर के अंदर से। इस घर के अंदर, ये घर हमारा है, इस घर के कमरे हमारे हैं, इस घर में जो दूध है वो हमारा है, इस घर में संदेश जो है वो हमारा है, इस घर का मक्खन हमारा है, और इस घर में जो कुछ भी है वो हमारा है, तुम सब क्यों खा रहे हो, तुम भाग जाओ इधर से। तो नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण और बलराम को कहा कि तुम्हारे जो दिन थे वो खत्म हो गए अभी, यू नो, ये जो ग्वालियों का जो दिन था वो चला गया, अभी ब्राह्मणों का दिन आया है। दिस इज अवर टाइम, योर डेज आर गॉन। तो अभी तुम यहां से फुटो, तुम यहां से निकल लो, यू नो, अभी ये हमारा टाइम है, और अगर तुम नहीं निकलोगे तो हम तुमको दंड देंगे। तो बलराम ने नित्यानंद प्रभु को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम इस तरह का धूर्तता करोगे हमारे से, तो मैं कृष्ण की कसम खा के कहता हूं उसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। सो श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे कृष्ण से नहीं डरता, क्योंकि मेरा जो कृष्ण है, मेरा जो भगवान है, वो गौरांग महाप्रभु है, विश्वंभर है। और इस तरह से एक दूसरे से फाइटिंग करने लगे और एक दूसरे के हाथ से छीन के वो प्रसाद खाने लगे, खाना खाने लगे। और सची माता ने ये सब देखा स्वप्न के अंदर, तो एकदम चकित रह गई। फिर उन्होंने देखा कि निताई जो है वो दौड़े दौड़े सची माता के पास आए और उसको कहे कि माता माता, मैं बहुत, मेरे को भूख लगी है, कृपया मेरे को चावल खिलाओ। और उनका स्वप्न भंग हो गया। और ये बात उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंशियल रूप से श्री गौरांग महाप्रभु को कही। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये बात सुनी तो बहुत ही खुश हुए और सची माता को कहा कि आप बहुत धन्य हो, और आज मुझे ये बात का विश्वास हो गया है कि आपके घर में जो भगवान है वो स्वयं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान है, और वह स्वयं आपका भोग स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जब मैं भोग लगाता था तो थाली मेरे को खाली मिलती थी, कभी आधी मिलती थी, तो मैं सोच रहा ये क्या हो रहा है। और कभी कभी मुझको आपकी पुत्र वधु पे डाउट भी होता था, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो ये जो लक्ष्मी प्रिया थी अंदर से सुन रही थी कि भगवान क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह की यू नो लीला हुई और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहे। अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लीला के बारे में डिस्कस करेंगे, आई थिंक बहुत टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। तो ये जो लीला है, ये है जगाई और मधाई के उद्धार की। तो राधा गोपीनाथ प्रभु एक दिन बोल रहे थे कि श्री नित्यानंद त्रयोदशी होवे, और जब नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा हो और जगाई और मधाई के बारे में अगर हम कुछ नहीं कहे तो मतलब वो क्लास पूरा नहीं हुआ। कुछ तो उनके बारे में कहना जरूरी है, कम से कम ये 2 शब्द बोलने भी जरूरी है। क्योंकि जैसे आप नरसिंहदेव भगवान के बारे में कहते हो तो प्रहलाद महाराज के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। आप बिना प्रहलाद महाराज के बोले नरसिंह भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। उसी तरह नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन नहीं कर सकते अगर जगाई और मधाई का वर्णन नहीं करेंगे। तो बताते हैं कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस 2 ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटीज हु दे आर। और वो फिर कहने लगे कि क्यों हमें जगाई और मधाई के बारे में हमेशा ही चर्चा करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया क्योंकि ये जगाई और मदाई के उद्धार की जो लीला है ये श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और ये लीला बताती है कि जो एकदम गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, जैसे हम इम्पोर्टेड चीज के बहुत शौकीन है, तो ये जो हरिनाम है ये यहाँ का नहीं है, गोलोकेर प्रेम धन बताते हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर कि ये जो हरिनाम है ये इस कलयुग का नहीं है, ये इस युग का नहीं है, ये कहाँ का, ये गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन ये इम्पोर्ट किया हुआ है। तो ये जो सुप्रीम प्रेम है भगवान का ये वो दे रहे हैं और मोस्ट अनक्वालिफाइड एकदम गिरे हुए व्यक्ति को दे रहे हैं, ये लीला वो दर्शाती है। तो एक बार यूं हुआ कि श्री गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रभु को ऑर्डर दिया और क्या कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो प्रकाश, प्रति घर घर जाओ करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। वो कहने लगे कि हरिदास ओ नित्यानंद आप सुनिए मेरी बात, आप जाइए और ये मेरे ऑर्डर से प्रचार कीजिए और हर किसी को जाकर कहिए कि भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, भगवान कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपकी माता है, कृष्ण आपके प्राण धन है, कृष्ण आपका जो आत्मा है, प्लीज कृष्णा का नाम लो और किसी चीज के बारे में मत कहो और शाम को आके मुझे रिपोर्ट दो। सगारंग महाप्रभु ये बोलने लगे कि प्लीज चैंट नेम ऑफ कृष्णा, वर्शिप कृष्णा, लर्न द साइंस ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज योर फादर, कृष्णा इज योर मदर, कृष्णा इज योर रियल वेल्थ एंड ट्रेजर एंड कृष्णा इज योर वेरी लाइफ एंड सोल। तो जाके बोले कि जाओ इस तरह से प्रचार करो। तो भगवान का ये आगे सुन के नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर वो निकल गए भगवान के नाम का प्रचार करने लगे और उन्होंने सबसे कहा कि डियर ब्रदर्स चैन द नेम ऑफ कृष्णा विल फुल अटेंशन, कि भगवान का नाम बहुत ही अच्छी तरह से आप लीजिए। और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको शिवास आंगन में कभी एंट्री नहीं मिलती थी तो वे लोग चिढ़ गए और वे प्रिटेंडर्स वो कहने लगे कि अरे ये नित्यानंद और हरिदास देखो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ये गौरांग महाप्रभु के जासूस है और ये हर घर घर में जाके चेक कर रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मारो इनको मारो। और बोलते हैं कि निमाई जो है इसने पूरा नवद्वीप को बिगाड़ दिया है, ये ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं क्या क्या प्रचार कर रहा है, इस तरह का बातें करने लगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रभु बस केवल हंसते थे और हरिनाम का प्रचार करते थे। तो हम लोग भी देखते हैं कई बार जब कोई भक्त प्रचार करने की कोशिश करता है तो कई लोग उसकी निंदा करते हैं, कोई रिलेटिव कोई रिश्तेदार उनकी निंदा करते हैं, कई दोस्त लोग उनकी निंदा करते हैं, तो हमको उनकी निंदा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और सिर्फ प्रचार करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बाद में इस तरह से प्रचार करते करते एक दिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर प्रभु दोनों जगाई और मधाई के सामने आ गए। अब बताते हैं कि जगाई और मधाई कौन थे, ना उनके बारे में सुनना चाहेंगे। बताते हैं कि जगाई और मधाई एक नंबर के रास्कल थे और उन्होंने सब तरह का जो भी गलत काम है वो किया था, नवद्वीप के अंदर एक भी ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। उन्होंने लोगों की हत्या की थी, वो दारू पीते थे, स्त्रियों का रेप करते थे और इतने सारे घिनौने तरह के काम करते थे कि वो ब्राह्मण परिवार के थे लेकिन फिर भी गाय का मांस खाते थे और दारू पीते थे और इस तरह की सारी चीजें उन्होंने की थी। और कोई भी साधु प्रकार का व्यक्ति अगर उनके सामने आया तो केवल उसको मारना शुरू कर देते थे, तो इसीलिए सारे व्यक्ति जो थे वो उनके सामने कभी नहीं जाते थे, उनकी छाया से भी दूर रहते थे, जैसे वो दिखाई दिए तो अपना रास्ता बदल देते थे। तो ऐसे व्यक्ति उनके सामने आ गए और जब उनको प्रचार करने जा रहे थे तो कुछ अच्छे डिवोटी ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कहा कि नहीं आप उनके पास मत जाओ, ये तो बड़े राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, ये आपको मार डालेंगे। तो भी नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनके पास गए और उनको जाके उन्होंने कहने लगे, उन्होंने क्या कहा, एक्चुअली हरिदास नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को कहते हैं, पहले नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि ये दो व्यक्ति जो है वो अधम है, सबसे ज्यादा अधम है, अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको मिल जाती है, अगर मर्सी उनको मिलती है तो मेरे गौरांग सुंदर का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। और गौरांग सुंदर का जो अवतार है वो इसीलिए हुआ है कि पतित जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, तो मेरे को इसके पास जाना चाहिए। और उन्होंने हरिदास से कहा कि हरिदास देखिए किस तरह के घिनौने ये कार्य कर रहे हैं ये दोनों व्यक्ति, ब्राह्मण परिवार से होने के बाद भी इतने पतित है, इतने गिरे हुए हैं, और इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि तुम ये इच्छा करो कि इनका उद्धार हो सके। तो वो हरिदास ठाकुर को ऐसा कह रहे, तो हरिदास ठाकुर भी नित्यानंद प्रभु को जानते बहुत अच्छी तरह से, तो उन्होंने कहा कि यस तुम्हारी कृपा से इनका जरूर उद्धार होगा। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है वही गौरांग महाप्रभु की इच्छा है, और इसलिए मुझे पता है कि अगर हम उनके पास जाएंगे तो वे जरूर भक्त बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो लेट अस गो एंड रिपीट द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। और वह गए और जाके उनको कहने लगे, उनके पास गए और वो कहने लगे, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। उन्होंने कहा कि प्लीज चैंट द नेम ऑफ कृष्ण, वर्शिप कृष्ण, सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्ण, कृष्ण इज योर फादर, कृष्ण इज योर मदर, कृष्ण इज योर रियल ट्रेजर एंड द वेल्थ, कृष्ण इज योर वेरी लाइफ एंड सोल, प्लीज चैंट द नेम ऑफ कृष्ण। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो दो भाई जो थे वो बहुत ही गुस्से हो गए और बहुत ही एंग्री मूड में उन्होंने एक दूसरे से कहा कि कौन वो लोग आ गए हमारे सामने, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं। और वह उठ के खड़े हुए और उन्होंने बोला पकड़ो इनको और मारो, और उनके पीछे भागने लगे। और उन दोनों को देख के हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भाग गए, दोनों भागने लगे, आगे आगे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, और पीछे पीछे जगह मदई भागने लगे। और भागते गए भागते गए भागते गए, लेकिन क्योंकि वो इतना मांस मच्छी और खाते थे तो बहुत जाड़े थे, इतना जोर से भाग नहीं सके, तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग के निकल गए। फिर हरिदास ठाकुर बोलने लगे कि ये नित्यानंद प्रभु जो है ये खुद पागल है, तो आज मैंने अपनी जान बचा ली, नहीं तो ये मेरे को मरवा देता था ना, ये पागल व्यक्ति है, ये नॉटी है, और ये पता नहीं कैसे कैसे मुझसे कार्य करवाता है। और जाके वो नित्यानंद प्रभु से कहने लगे, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं रेस्टलेस या नॉटी नहीं हूं, रेस्टलेस इज योर लॉर्ड गौरांग महाप्रभु। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमको ये आदेश दिया जाकर इन लोगों को प्रचार करने के लिए, तो अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुमको पता चलेगा कि मेरी गलती नहीं है, ये गौरांग महाप्रभु की गलती है, उन्होंने हमको कहा है। और इस तरह से दोनों झगड़ा करने लगे और वो चले गए। फिर दूसरे दिन वापस से जाके जगाई और मदई के पास पहुंच गए, इतना गट्स था उनके पास, और जाके जगाई मदई को फिर कहने लगे, यू नो कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, और कृष्ण का नाम लो, कृष्ण भजो, और कृष्ण के बारे में कीर्तन करो। और जगाई और मदई को इस बार इतना गुस्सा आया कि कल हमने तुमको भगाया था, तुम वापिस आ गए, इतनी उद्दंडता। और फिर मदई को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने एक मटका लिया और सीधा फेंक के नित्यानंद प्रभु के ऊपर मारा, और वह मटका आके नित्यानंद प्रभु के माथे पे लगा, सर पे लगा, और उसमें से खून निकलने लगा बहुत जोर से। और जब लोगों ने ये दृश्य देखा तो बहुत ही सब घबरा गए और सब व्यक्ति ये प्रार्थना करने लगे कि इनको बचाओ नहीं तो आज ये मारे जाएंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु वो मुस्कुराने लगे मदई और जगाई को देख के, और मदई जैसे दूसरा मटका लेके जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर फेंकने गया तो जगाई ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, तू एक ब्राह्मण को मार रहा है, तेरे को पता नहीं उसको क्यों मार रहा है, उसके सिर से खून निकल रहा है, ऐसा करके जगाई ने उसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश की। तो जो दूसरे भक्त लोग थे वो दौड़े दौड़े गौरांग महाप्रभु के पास गए और उनको बोलने लगे कि देखो ये मदई ने श्री गौरांग महाप्रभु के सिर पे नित्यानंद प्रभु के सिर पे दे मारा है और बहुत खून निकल रहा है। तो तुरंत गौरांग महाप्रभु वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, वो बोले चक्र चक्र चक्र, और सुदर्शन चक्र उनकी उंगली पे आके खड़ा हो गया। और जैसे वो सुदर्शन चक्र फेंक के मदई को मारने वाले थे, नित्यानंद प्रभु ने उनके पैर पकड़ लिए, उनके चरणों में जा गिरे और बोले कि नहीं प्रभु, ये आप क्या कर रहे हो, कि आपका जो अवतार हुआ है इस बार वह अवतार है दुष्टों को मारने के लिए नहीं हुआ है, पर उनकी जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसका सफाया करने के लिए हुआ, उसको खत्म करने के लिए हुआ है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको मारो मत, और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है। और एक बात आपको बताता हूँ कि जब मदई ने मुझे मारने की कोशिश की तो इस जगाई ने मुझे बचाया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुनाया कि जगाई ने सुना कि जगाई ने नित्यानंद प्रभु को बचाया तो बड़े खुश हो गए, और वो नित्यानंद जगाई के पास जाकर कहने लगे कि हे जगाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और कृष्ण तुम्हारी रक्षा करे, और तूने मुझे आज खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि तूने नित्यानंद प्रभु को बचाया है, उसकी सहायता की है, और इसके लिए आज से मैं तुझे कृष्ण प्रेम देता हूँ। और जैसे ही सारे भक्तों ने यह सुना तो सब जोर जोर से श्री गौरांग महाप्रभु की इस तरह से कहने लगे, और जगाई को कृष्ण प्रेम मिल गया। और जगाई ने जब चैतन्य महाप्रभु ने जगाई से कहा कि हे जगाई कृपया मेरी ओर देखो, तो जगाई ने क्या देखा, उसने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु नारायण के रूप में चार हाथ है जिसमें शंख चक्र गदा और पद्म है, और इस तरह का दृश्य देखकर काफी वो चकित हो गया और धरती पे गिर गया, मूर्छित हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उसके सामने खड़े हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने अपना जो चरण है वह जगाई के छाती पे रखा है, और इस तरह से उसको ये कृपा मिली। तो जब जगाई को ये कृपा मिली तो मदई भी थोड़ा उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और वह चैतन्य महाप्रभु से कहने लगा कि हे महाप्रभु, कृपया आप मुझे भी माफ करो और मुझे भी कृष्ण प्रेम दो। और उसने एक रीजन दिया, उसने कहा कि जितने भी पाप हमने किए हम दोनों 50-50 के पार्टनर है उसमें, दोनों ने साथ में किए, जो भी काम मैंने किया जगाई ने भी किया, सब कुछ किया, तो आप क्यों इसको खाली कृपा दे रहे हो मेरे को नहीं दे रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुझे मेरी कृपा नहीं मिल सकती, तू इसके लायक ही नहीं है। कहा कि तू मेरे नित्यानंद प्रभु को मारना चाहता था, तो मदाई ने कहा कि नहीं भगवान, आप इतने कठोर हृदय मत होइए और आप ऐसा मत कहिए, क्या भूल गए कि आपने इतने जो इनकार्नेशन लिए थे इतने अवतारों में कई राक्षस आपको मारने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी आपने उनको माफ करके उनको अपना प्रेम दिया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो बात दूसरी थी, ये बात दूसरी है, क्योंकि यहाँ पर तू नित्यानंद प्रभु को तूने मारा है तो मैं भी तुझे माफ नहीं कर सकता। तो नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं जो हमारे दीन बंधु प्रभु अब जो आए थे लास्ट शुक्रवार को, उन्होंने गाया था वैष्णव गोसाई के बारे में, तो कहते हैं कि हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तो उन्होंने कहा कि नित्यानंद प्रभु को तूने अपराध किया है तो तुझे और कोई माफ नहीं कर सकता, नित्यानंद प्रभु माफ कर सकते हैं, तो जा और मूर्ख उसके चरणों में जाके गिर। तो जैसे ही मदाई जाके नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिरा, नित्यानंद प्रभु ने उसे गले लगा लिया, वो इतने दयालु है ना, वो बलराम जी की तरह नहीं है। तो उन्होंने उसको गले लगा दिया और उसको भगवान का जो प्रेम है वो दिया, और गौरांग महाप्रभु ने तब जगाई और मदाई को कहा कि आज से मैं तुम्हारे सारे के सारे जो पाप है वो अपने शरीर पे ले रहा हूँ, लेकिन आज के बाद कोई भी पाप मत करना। और लोगों ने देखा कि स्लोली जो गौरांग सुंदर थे वह उनका शरीर काला पड़ गया ये जगाई मदाई का पाप लेने की वजह से, और फिर वापस वो अपने रूप में आए। सो ये जब हुआ तो जगाई और मदाई को जब कृष्ण का प्रेम मिला तो वे भी भगवान के लिए नृत्य करने लगे और जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उन्होंने फिर बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं की चैतन्य महाप्रभु से, और उन्होंने कहा कि हे गौरांग सुंदर, हे चैतन्य महाप्रभु, आपने आज बहुत ही उत्कृष्ट रूप की कृपा बरसाई है हमारे पे, और आपने पहले भी अपने अवतारों में बहुत कृपा दी है, लेकिन आज जो आपने कृपा दी है वह सबसे उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसी कृपा भगवान का कोई भी अवतार ने आज तक नहीं दी है। और फिर उन्होंने अजामिल का उदाहरण प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा कि अजामिल बहुत ही गिरा हुआ प्रकार का व्यक्ति था, लेकिन उसको भी आपने प्रेम दिया, लेकिन हमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्यों उसको ये प्रेम मिला? क्योंकि उसको ये प्रेम मिलना ही था, क्योंकि उसने भगवान नारायण का नाम लिया था, लेकिन हम इतने अधम और इतने पापी है कि हमने आपका नाम नहीं लिया, उल्टे हम नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए दौड़े, हरिदास ठाकुर को मारने के लिए दौड़े, फिर भी आपने हमारे पे कृपा बरसाई। और अजामिल को जब उसने भगवान का नाम लिया तो उसने क्या देखा कि चार विष्णु दूत आए हैं और केवल चार विष्णु दूत का वो दर्शन कर सके, लेकिन जब हमारे ऊपर आपने कृपा दी तो हमने क्या देखा कि हमने आपको देखा, आपके चतुर्भुज रूप को देखा, स्वयं आपके सुदर्शन चक्र को देखा, नित्यानंद प्रभु को देखा, और आपके सारे के सारे जो पार्षद है उनको हमने देखा। तो हमारी जो कृपा है, आपने जो हमारे पे जो कृपा बरसाई है वो अजामिल से भी ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि अवर डिलीवरेंस नाउ ओवर शेडोज योर ग्लोरीज ऑफ डिलीवरिंग अजामिल, और इस तरह से वो प्रार्थना करने लगे। और ये होने के बाद जगाई और मदाई जो थे वो बहुत ही सोबर प्रकार के व्यक्ति हो गए, और मदाई जो थे वो हमेशा पश्चाताप करते रहते थे और बहुत ही रोते थे हमेशा, और उनको ये दुख रहता था कि कैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर हाथ उठाया और उनको मारा, तो हमेशा ये रोते रहते थे। और एक बार वो रोते रोते नित्यानंद प्रभु के पास गए और कहने लगे कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने ये अपराध किया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे तुमने कोई अपराध किया ही नहीं है, अगर कोई छोटा बालक अपने पिता के प्रति कोई अपराध करता है तो वो अपराध नहीं होता है, तो मैंने तो तुम्हें कभी का माफ कर दिया है। तो फिर जगाई ने मदाई ने कहा कि आपने तो मुझे माफ कर दिया है, लेकिन मैंने आपके प्रति तो अपराध किया ही किया, बहुत सारे दूसरे व्यक्तियों के प्रति भी अपराध किया है, और मैं नशे में धूत था तो मेरे को ये नहीं मालूम कि मैंने किस किस के प्रति अपराध किया है, तो वो अपराध कैसे क्षमा होंगे, और आप सबके हृदय में हो, आप ही मुझे कुछ गाइड कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने मदाई से कहा कि कोई बात नहीं, तो गंगा के किनारे जा और एक बहुत ही अच्छा घाट बना, आज भी वहाँ बंगाल में ये मदाई घाट है जहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन के लिए। तो कहा कि एक अच्छा घाट बना और जो व्यक्ति भी उस घाट पर नहाने के लिए आएगा तो उसके चरणों में गिर जा और गिर के माफी मांग, और जब वो तुझे माफ कर देंगे तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। सो मदाई जो था उसने अपने हाथों से इतना अच्छा घाट बनाया, और जब व्यक्ति वहां पर नहाने के लिए जाते थे तो उनके चरणों में गिरता था और उनसे माफी मांगता था। तो कुछ कुछ व्यक्ति थे जिनके प्रति अपराध किया था मधाई ने, तो वे बड़े गुस्सा होते थे और पत्थर लेके मधाई को मारते थे। तो मधाई क्या करता था, वही पत्थर उठाता था और वापस नहीं मारता था, वही पत्थर उठाता था और उसी व्यक्ति के पास जाकर उसको वो पत्थर देता था और कहता था और मारो मुझे, मैं बहुत पापी हूँ। और इस तरह का जब परिवर्तन लोगों ने देखा कि जगाई और मदाई में इस तरह का भयंकर परिवर्तन हो गया है, तो उन्होंने ये समझा कि श्री गौरांग महाप्रभु जिनकी वो निंदा करते थे, उन्होंने समझा कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान नारायण ही है। तो ये बात उनकी समझ में आ गई। तो ये जो लीला है जगाई और मदाई की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सिर्फ 5 मिनट और कुछ बोलेंगे, और हालांकि बहुत सारी लीला है नित्यानंद प्रभु के बारे में, ये पॉसिबल नहीं है कम समय में इतना सब कहना। लेकिन एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इसकी जो कृपा आ रही है वो सिर्फ नित्यानंद प्रभु की वजह से ही आ रही है। और नित्यानंद प्रभु के जो बहुत ही चोजन पार्षद है, वह है हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद के बारे में एक व्यक्ति ने कहा कि वह भगवान नित्यानंद के शक्तावेश अवतार है, क्योंकि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, जैसे कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने एक जगह और मधाई का उद्धार किया था, लेकिन शिला प्रभुपाद ने हजारों जगह और मधाई का उद्धार किया है। अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सिचुएशन है वो जगह और मधाई से बहुत ही डाउन है। तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि जगह और मधाई से 100 गुना पतित थे। हिप्पी तरह के लोग थे जब वो पाश्चात्य देश में गए थे। तो प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए यू नीड क्वालिफाइड पीपल, बहुत अच्छे तरह के व्यक्ति चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने किसको पकड़ा, हिप्पीज को पकड़ा, और उस हिप्पीज के थ्रू उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की 1966 में। तो बताते हैं कि ये जो व्यक्ति थे जिनके साथ प्रभुपाद डील कर रहे थे, वो कैसे थे, वह भी अधम थे, वह भी जगाई और मधाई के जैसे ही थे। बताते हैं कि वो डबल ड्रॉप आउट थे। पहले तो एक तो वो हिप्पी थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और स्पिरिचुअलिटी से बहुत बहुत दूर थे। और रविंद्र स्वरूप प्रभु एक बार कह रहे थे, जो गोविंद प्रभु ने कहा था, कि वो फर्स्ट क्लास व्यक्ति नहीं थे, वो सेकेंड क्लास व्यक्ति नहीं थे, वो थर्ड क्लास भी नहीं थे, वो फोर्थ क्लास भी नहीं थे, वो टेंथ क्लास के व्यक्ति थे। इस तरह के व्यक्ति थे जिनका समाज के अंदर कोई यूज नहीं था। उस तरह के व्यक्ति के पास जाके प्रभुपाद जी ने उनको पकड़ा, एंड प्रभुपाद टर्न हिप्पीज इनटू हैप्पीज। और इस तरह के व्यक्ति को लेके उन्होंने इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। और उन टेंथ क्लास व्यक्तियों ने एक चमत्कार करके बताया, एक मिराकल करके बताया, और वह चमत्कार भारत के फर्स्ट क्लास सन्यासी और बंगाल के फर्स्ट क्लास सन्यासी भी नहीं कर सके। वह सब गए और फेल हो गए, लेकिन केवल प्रभुपाद जी की अनुकंपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, जिनके हृदय में श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा थी, और वह नित्यानंद प्रभु की कृपा उन्होंने पूरे लोगों को दी, और प्रभुपाद जी की कृपा से और उनके शिष्य की कृपा से, जैसे हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस जयपता का स्वामी महाराज, और इस तरह के जो उनके शिष्य है, वह यहाँ पर आए, और आज अरब देश के अंदर आकर उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी थी, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि पृथ्वी थे आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरो नाम, उस चीज का उन्होंने बेड़ा उठाया और उसे उसको पार लगाया। तो बताते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा, तो आज हम जो बैठकर ये भगवद गीता, श्रीमद भागवतम और चैतन्य चरितामृत की जो चर्चा कर पा रहे हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से है, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। शिला लोचनदास ठाकुर एक भजन गाते हैं जिसमें वो कहते हैं, यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मोन धरी तांदे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। तो एक व्यक्ति, एक डिवोटी मुझसे कह रहा था कि जो भक्त गण है वो एक स्टेप आगे जाते हैं और वो गाते हैं, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो के मोन धरी तांदे। शिला प्रभुपाद की
जय,
श्री नित्यानंद प्रभु की
जय,
श्री गौरांग महाप्रभु की
जय,
निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल जैसा कि हमने पहले कहा, वराह जयंती है, वराह द्वादशी है और नित्यानंद त्रयोदशी है। तो कल हमारे जो गॉड ब्रदर है योगेश्वर कृष्ण प्रभु, योगेश्वर प्रभु उनके घर पे प्रोग्राम है शाम को 6:30 बजे 6:30 को। तो उनका जो घर है वह हमदान में, जो पुराना अल रुस्तमानी एक्सचेंज जो था, जो अलमूर फार्मेसी के पास है, उसके पीछे सर्विस रोड पे एक अल जाबरी लॉन्ड्री करके बिल्डिंग है, आप सबने कहीं देखा रहेगा। तो उनके घर पे फर्स्ट फ्लोर 102 है और 103 पहले माले पे है, तो आपको पता चल जाएगा। उनका एड्रेस है अल जाबरी लॉन्ड्री नियर ग्राफिक बिल्डिंग ऑन हमदान रोड बिहाइंड अलमूर फार्मेसी या अल रुस्तमानी एक्सचेंज जो पुराना वाला था। तो आप सभी को आमंत्रण है वहाँ पर कि आप सभी आइए और हमारे स्वयंस्फूर्ति कृष्ण प्रभु बहुत ही अच्छा कल क्लास देने वाले हैं वराह जयंती के बारे में। तो आप सबसे ये निवेदन है कि कृपया आप वहाँ पर आइए। और आज एकादशी है तो आज हमने ऑलरेडी फास्ट किया ही है, और कल भी एक्चुअली फास्ट होना चाहिए था, पर क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी दोनों साथ में आई है तो उसका जो फास्ट था उसका उपवास हमने आज ही कर लिया, तो कल फिस्ट है। और कल शाम को योगेश प्रभु अपने घर पे जो प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं उसके अंदर सभी को फिस्ट के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। कुछ और अनाउंसमेंट है जी? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना सहन किया थोड़ी देर तक। अगर कोई मुझसे गलती हो गई होगी तो कृपया मुझे माफ कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे।